समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दोस्तों, लगातार आगे बढ़ती पल पल रंग बदलती जिंदगी की सुहानी सुबह को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक एफएम गोल्ड पर। मनोरंजन और जानकारियों भरे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, कुछ बात होगी मौसम के मिजाज की, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र भी करेंगे जिनका है रिश्ता आज की इस तारीख से, और फिर याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को जिनका है आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। आज आपका हम सफर हूं मैं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं आपकी जानी पहचानी हरदिल अजीज तन्वी खुराना। तन्वी, नमस्कार।
नमस्कार मुनीश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, मुनीश हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड टुडे इज 26th of February 2026। वी विल लेट यू नो व्हाई दिस पर्टिकुलर डे इज सो स्पेशल, एंड टिल 8 o'clock वी आर हियर विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड बिफोर वी बिगिन आवर हेडलाइंस, लेट मी जस्ट विश यू अ वेरी हैप्पी थर्सडे, एंजॉय योर डे। This is almost near the weekend, so smile more, live more, relax more. Let's begin our program with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई में भारत पूरी मजबूती और पूरे विश्वास के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल की संसद नेसेट में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहले भाषण में श्री मोदी ने इजराइल के साथ एकजुटता का संदेश दिया। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद शांति के लिए खतरा है और कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती है।
नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस, नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म। इंडिया हैज ऑल्सो एंड्योर्ड द पेन ऑफ टेररिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक यू, वी हैव कंसिस्टेंट an uncompromising policy of zero tolerance for terrorism.
श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के भयानक आतंकी हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के लिए भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्वीकृत गाजा शांति पहल को इस क्षेत्र में न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पहल को पूरा समर्थन दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, इजराइल नवाचार और प्रौद्योगिकी का एक शक्तिशाली केंद्र है, इसलिए भारत उसे अपना स्वाभाविक साझेदार मानता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि की, जिससे कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा।
Prime Minister Narendra Modi conferred with the Speaker of the Knesset Medal in recognition of his exceptional contribution to strengthening strategic relations between India and Israel. The Indian Prime Minister is the first leader to receive this medal, which is the highest honor of the Knesset, the Israeli Parliament. The award was conferred by Knesset Speaker Amir Ohana after Prime Minister Modi's address at the Israeli Parliament.
होली के त्योहार के दौरान सुरक्षित और आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए 18 मार्च तक 1244 होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मांग बढ़ती है तो और अधिक विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं।
After the Supreme Court took strong note of references to corruption in the judiciary in the Class 8 Social Science textbook, the NCERT, that is National Council of Educational Research and Training, said it has put the book's distribution on strict hold and apologized for what it termed an error of judgment. In a press statement issued last evening, NCERT said that after bringing out the Social Science textbook, Exploring Society, India and Beyond Volume 2nd for Class 8 yesterday, it has been observed that certain inappropriate textual material and errors of judgment have inadvertently crept into Chapter Number 4 entitled The Role of Judiciary in Our Society. The development comes after the Supreme Court wrapped the council and took suo motu cognizance of the content, with the Chief Justice expressing concern over the manner in which the judiciary was portrayed in the chapter.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने पर फिल्म बूम की निर्माता लक्ष्मी प्रिया देवी और फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय सिनेमा के लिए गौरव का एक पल है।
Diplomats from Iran and the United States are set to meet in Geneva today for the third round of nuclear negotiations, even as Washington imposes fresh sanctions on Tehran's oil trade and weapons networks. Iran's President Masoud Pezeshkian said he remains hopeful ahead of the talks, calling them a possible turning point in the long-running standoff between the two countries. In a public address, he said the negotiations are proceeding under the guidance of Ayatollah Ali Khamenei and aim to move beyond what he described as a state of neither war nor peace.
और अब बात क्रिकेट की दोस्तों, श्रीलंका की टीम आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से बाहर हो गई है। कोलंबो में सुपर 8 के मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से पराजित किया। न्यूजीलैंड के 169 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 107 रन पर सिमट गई। कप्तान मिशेल सेंटनर ने सर्वाधिक 47 रन बनाए और एक विकेट भी ले लिया। अहमदाबाद में आज दोपहर 3 बजे वेस्टइंडीज का मुकाबला होगा दक्षिण अफ्रीका से, और चेन्नई में शाम 7 बजे भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। और दोस्तों, अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का, और सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव आयोजित होने जा रहा है। ये महोत्सव दोस्तों अगले माह की 25 से 31 तारीख तक चलने वाला है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये महोत्सव दिल्ली को वैश्विक सांस्कृतिक और एक सिनेमाई केंद्र के तौर पर स्थापित करने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली सरकार ने बताया कि पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि इससे विधवा पेंशन पाने वाली 3,90,000 से ज्यादा महिलाओं और दिव्यांगजन पेंशन योजना के करीब 1,31,000 लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने यमुना पार्क क्षेत्र से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर के पास से 1 किलोग्राम से ज्यादा का मादक पदार्थ जब्त कर लिया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। और इसके अलावा तस्कर के पास एक स्कूटी, एक सोने की चेन और एक आईफोन भी बरामद हुआ है।
And moving towards Chennai, as part of preparation for the conduct of general elections to TNLA this year, the training to various stakeholders is being conducted across Tamil Nadu. The training for the master trainers at state level was conducted on 24th and 25th in Chennai. In this 2 days training program, 84 state level master trainers participated and were trained on the subjects relating to conduct of elections, model code of conduct, EVM, VVPAT operations and media related issues. The training sessions were handled from neighboring Karnataka, Kerala and Puducherry, in addition to the national level master trainers. And we have some more news from Chennai itself. The 20.6 kilometer elevated corridor will create seamless connectivity between Chennai port and Madura Oil, allowing container trucks to bypass city roads. This dedicated freight route is expected to reduce congestion in core areas and ensure faster cargo movement to and from the port. Once operational, the expressway is expected to cut travel time between the port drastically. Improved logistics will enhance Chennai's position as a major trade hub.
और अब बात दोस्तों मुंबई की। मुंबई के नगर आयुक्त भूषण गंगरानी ने जानकारी दी है कि नगर निकाय वीर माता जीजाबाई भोंसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण करेंगे और विस्तार करके इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की योजना बना रहे हैं। बुधवार को नगर निगम का बजट प्रस्तुत करते हुए श्री गंगरानी ने कहा कि इस योजना के तहत 70 से ज्यादा प्रजातियों को प्रदर्शित करने वाला एक एक्वेरियम भी बनाया जाएगा, जिसके दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और इस विस्तार योजना में 18 अलग अलग पशु आवासों वाला एक विदेशी चिड़ियाघर भी शामिल है। जी हाँ, और इसके अलावा मुलुंड में एक विदेशी पक्षीशाला भी प्रस्तावित है, जिसे दिसंबर 2027 तक खोला जाएगा और इसके लिए 136.70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मुंबई से ही एक और खबर, मुंबई के नगर आयुक्त भूषण गंगरानी ने पार्टिसिपेट मुंबई नाम से एक अभिनव पहल की घोषणा की है, जिसे कुछ महीनों में शुरू किया जाएगा। बुधवार को नगर निगम का बजट पेश करते हुए श्री गंगरानी ने कहा है कि इस योजना के तहत एक आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जो नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट संस्थाओं को बीएमसी के नेतृत्व वाली सामाजिक पहल में योगदान के लिए जोड़ेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कानूनी अनुपालन भी सुनिश्चित हो जाएगा।
And from Mumbai, let's move towards Bangalore. In a noble gesture, the family of a youth from Mandya in Karnataka consented to donate his organs after he was declared brain dead, bringing hope to six patients. The transplants were successfully performed at the Trauma and Emergency Care Center of Victoria Hospital under Bangalore Medical College and Research Institute. The youth suffered a severe brain hemorrhage following a bike accident on 22nd of February and was later declared brain dead by a medical panel. After counseling, the family agreed to donate his liver, kidneys, heart valves and other organs. Doctors lauded the family's courageous decision, calling it a life-saving act amid tragedy.
और अब बात कोलकाता की, जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार SIR प्रक्रिया के जरिए नियुक्त न्यायाधीशों की प्रगति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक निर्धारित की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ चर्चा का नेतृत्व करेंगे और वार्ता के इस तीसरे दौर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य सुनवाई और दस्तावेजों की सत्यापन की प्रगति पर गौर किया जाएगा। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कानून व्यवस्था की रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए कल शाम पुलिस, अर्धसैनिक बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी।
And about Hyderabad, the South Central Railway achieved a significant digital milestone yesterday by launching a next-generation rail parcel app at Rail Nilayam, Secunderabad. This first-of-its-kind digital e-marketplace aims to revolutionize freight logistics by offering seamless end-to-end services including doorstep pickup and delivery. General Manager Sanjay Kumar Srivastav inaugurated the application, emphasizing its role in eliminating long queues and bringing the parcel office directly to the customer's fingertips. The app features real-time tracking, automated notifications, and secure digital payment options. Initially, the service is being rolled out as a pilot project across 7 major locations, including Hyderabad, Vijayawada, and Bangalore.
और दोस्तों, समाचारों के बाद अब बात महानगरों के मौसम की। चूंकि अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं एक से दूसरे महानगर में ताकि आप रहें तैयार, तो राजधानी में आज सवेरे हल्की हल्की धुंध छाए रहने की संभावना। वहीं आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और मुंबई में रहेगा आसमान साफ, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। जबकि कोलकाता में आज आसमान साफ रहने का ही अनुमान है, अधिकतम तापमान जा सकता है 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रह सकता है 19 डिग्री के आसपास।
And Chennai had fog or mist in the morning, but will have partly cloudy sky later. The minimum temperature was 24 degrees and maximum will be around 33 degrees. Bangalore is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 19 degrees and maximum will be around 33 degrees. And if we talk about Hyderabad, Hyderabad is expected to have partly cloudy sky but with haze. The temperature will hover somewhere between a minimum of 22 degrees degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और दोस्तों अब बात उन वजहों की जो बनाती हैं खास आज की इस तारीख यानी 26 फरवरी को खास. तो देश और दुनिया के इतिहास में 26 फरवरी जिन वजहों से महत्वपूर्ण है उनमें एक याद आती है 1994 में. यही थी वो तारीख जब उत्तर कोरिया अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोलने पर सहमत हुआ था.
In the year 1815, Napoleon Bonaparte escaped from exile on Elba, beginning the 100 Days campaign.
और 1999 में दोस्तों 5 ग्रैमी अवार्ड जीतकर रैप गायिका लॉरेन हिल ने बनाया था एक नया रिकॉर्ड.
And if we talk about 1910, Mahatma Gandhi supported the African People's Organization's resolution in South Africa to declare the Prince of Wales' arrival a day of mourning in protest against discriminatory laws.
और 2004 में 26 फरवरी का ही वो दिन था जब मैसेडोनिया के राष्ट्रपति बैरिस्ट्रेज कोवस्की की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी.
In 1916, Charlie Chaplin signed a film contract with Mutual Film Corporation.
2006 में परमाणु परिशोधन पर ईरान और रूस में हुआ था समझौता. और 2007 में नेपाल सरकार द्वारा नेपाल नरेश की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की गई थी.
In the year 1936, the February 26 incident took place in Tokyo as an attempted military coup. In the year 1991, Iraqi forces set fire to oil wells in Kuwait while retreating during the Gulf War. In 2019, the Indian Air Force conducted airstrikes in Balakot in response to the Pulwama attack.
और दोस्तों भला कैसे भूला जा सकता है 2008 में ये दिन ये तारीख हमारे लिए रही थी खास क्योंकि भारत ने परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का समुद्र के भीतर किया था सफल परीक्षण. और दोस्तों अब याद करते हैं आइए ऐसी कुछ जानी मानी हस्तियों को जिनकी है आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन. तो आज पुण्यतिथि है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर की जो न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद कवि अप्रतिम क्रांतिकारी दृढ़ राजनेता समर्पित समाज सुधारक दार्शनिक दृष्टा कवि और इतिहासकार भी थे. और उनकी इन्हीं खूबियों ने उन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर स्थापित कर दिया. अनेक पुस्तकों की उन्होंने रचना की जिनमें अंग्रेजी में जो लिखी गई किताबें थी उनके मैं कुछ शीर्षक बता देता हूं आपको हिंदी में. भारतीय स्वातंत्र युद्ध, मेरा जीवन कारावास और अंडमान की प्रतिध्वनियां जिनके अनुवाद आज उपलब्ध हैं. और 1909 में उन्होंने लिखी थी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और इसमें सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आजादी की पहली लड़ाई साबित किया था. और इनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम है आज वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा.
And today is the birthday of Kuntal Joshier, an Indian mountaineer based in Mumbai. On 15th of May 2018, he stood on top of Mount Lhotse, the fourth highest mountain in the world at 8,516 meters. During the course of the expedition, Kuntal only consumed strictly vegan food and used only vegan gear, including a one-piece synthetic suit made completely from animal-free material as well as and gloves constructed devoid of down or leather. He climbed Mount Everest from the south side on a completely plant-based diet. And he reached the summit on 19th of May 2016. He is also the first mountaineer to have climbed Mount Manaslu, the eighth highest mountain in the world, on a completely plant-based diet. And he reached the summit in 2014 on 1st of October.
और दोस्तों आज ही है पुण्यतिथि डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की जो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरी की उपाधि हासिल की. जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी उस दौर में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करना एक मिसाल बन गई. आनंदी गोपाल जोशी का व्यक्तित्व महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा. उन्होंने सन 1886 में अपने सपने को साकार रूप दिया। जब उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला किया था तो उस समय समाज में उनकी काफी आलोचना भी हुई थी कि एक विवाहित स्त्री भला विदेश यानी पेनसिल्वेनिया जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे करेगी। लेकिन आनंदी बाई एक दृढ़ निश्चय महिला थी और उन्होंने आलोचनाओं की जरा भी परवाह नहीं की और यही वजह थी कि उन्हें पहली भारतीय महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ। आनंदी गोपाल जोशी के जीवन पर कैरोलिन विल्स ने साल 1888 में उनकी बायोग्राफी भी लिखी थी और इस बायोग्राफी पर आधारित आनंदी गोपाल नाम से हिंदी टीवी सीरियल का प्रसारण किया गया जिसका निर्देशन किया था कमलाकर सारंग ने।
And today is the birthday of retired Colonel Ajay Kotiyal, an Indian politician and also a former officer of the Indian Army. He is also a mountaineer and philanthropist and was the principal of Nehru Institute of Mountaineering, Uttarakhand. He was the head of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, when the institute was given the task of rescue and rehabilitation around the Kedarnath temple after its destruction by a flash flood in 2013. His non-profit trust Youth Foundation trains young boys and girls from Uttarakhand to join the Indian Army. Colonel Kotiyal, when he was major, was part of the first team of the Indian Army that successfully summited the Mount Everest in 2001 under the leadership of Brigadier Krishna Kumar, AVSM. In 2012, Colonel Kotiyal led a team of 7 female officers from Indian Army and successfully scaled the world's highest peak for the second time. Mrs. Pratibha Patil, the President of India at that time, awarded him Shaurya Chakra, and he has got a lot many medals and many more things like Kirti Chakra, Shaurya Chakra, Vishisht Seva Medal and Operation Vijay Medal and a lot more.
Colonel Kotiyal ka jeevan nisandeh aaj ke yuvaon ke liye, is peedhi ke liye ek bahut badi prerna aur misal hai aur inhone itne padak hasil kiye, itni unhone safaltaen hasil ki, usse main samajhta hu ki jo aaj ki peedhi hai wo zarur बहुत कुछ प्रेरणा ले सकती है। और तन्वी, अब बात करें कुछ ऐसी हस्तियों की जिनके आज हैं जन्मदिन। तो दोस्तों, आज है जयंती हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई की, जो अपनी पारिवारिक एक्शन गीत और नृत्यों से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जो भारतीय जनता की पसंद के अनुरूप थी और जिनके माध्यम से उन्होंने अपार सफलता प्राप्त की। उनकी फिल्मों ने मसाला फिल्म कहलाने वाली एक नई शैली को दरअसल परिभाषित किया। उनकी फिल्मों में एक आम विषय होता था खोना और पाना, यानी एक ऐसा कथानक जिसमें परिवार के सदस्य अलग अलग हो जाते थे, बिछड़ जाते थे और फिर मिल जाते थे। और दर्शक ये जानते भी थे कि ये बिछड़े हुए भाई और माँ बाप फिर से अंत में मिल जाएंगे, यानी फिल्म में कोई रहस्य जैसी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी दर्शक बड़ी संख्या में उनकी इन फिल्मों के दीवाने थे और इनकी अनेक फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई। तो एक तरह से जैसे अगर हम तुलना करें तो जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में लोग ये जानते थे कि एक मर्डर मिस्ट्री है और अंत में वो सुलझ जाएगी और ये जानते हुए भी लोग उनको देखने के लिए पहुंचते थे, तो उसी तरह से मनमोहन देसाई के जो दीवाने हैं सब कुछ जानते हुए उनकी फिल्मों को बहुत सराहते थे, देखते थे। और खास तौर पर जो इस तरह की मसाला फिल्में हैं उनमें अगर हम नाम लें मशहूर हैं जो बहुत सफल हुई, रोटी, चाचा भतीजा, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश, सुहाग, नसीब, देशप्रेमी, कुली और मर्द। तो दोस्तों, आइए आज याद करते हुए मनमोहन देसाई को सुनते हैं उनकी कुछ यादगार फिल्मों से संवाद और गीतों के ये प्यारे से अंश।
कमल कीचड़ में रहे तो क्या कीचड़ का असर उस पे पड़ सकता है?
बिल्कुल नहीं।
आचार्य धीश का कहना है कि मनुष्य को मक्खन में बाल की तरह, समुद्र में जाल की तरह और युद्ध में ढाल की तरह रहना चाहिए। तालियां।
बेटे, ये तालियां किस लिए? ये घर है, थिएटर का स्टेज नहीं।
दादाजी, विश्व विख्यात अभियंकार स्वर्गीय नाटककार शेक्सपियर का कहना है कि दुनिया एक स्टेज है, जिंदगी उसका ड्रामा है, इंसान केवल नाम मात्र एक्टर है और मौत उसका पर्दा है।
सचमुच ऐसा कहा है?
हाँ।
तालियां, जोर से तालियां।
हम बंजारों की बात मत पूछा जी, हम बंजारों की बात मत पूछा जी, जो प्यार किया, जो प्यार किया।
अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे।
हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल के पास सदा चुप रहना जाने।
हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने,
अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, हिम्मत अपनी और भी बढ़ जाती है।
ये मत भूलो ऐसे ही दीवानों के पैरों में जंजीर भी पड़ जाती है।
दीवाने जंजीर से क्या डरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने।
मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों।
And today is the birthday of Michael Bolton, an American singer and songwriter. He performed in the hard rock and heavy metal music genres from the mid-1970s to the mid-1980s. And his early career saw him as a successful songwriter, co-writing hits like How Am I Supposed to Live Without You, which he later recorded as a solo single. So let's just enjoy the same. And today is the death anniversary of Devendra Goyal, an Indian film director and producer of Bollywood films and best known for his work in 1950s and early 1960s. Let's just hear a very beautiful song from Ek Phool Do Mali, the movie that he directed.
Tujhe suraj kahun ya chanda, tujhe deep kahun ya tara, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से
He directed Aankhein on his debut, and there's another hit that he gave, Ek Saal, in 1957, starring Madhubala and Ashok Kumar, and the song we are going to play for all of you is sung by Lata Mangeshkar. And today is the birth anniversary of Manmohan Krishna, an Indian film actor and director who worked in Hindi films for 4 decades, mostly as a character actor. But the thing about him that we don't know is that he has also sung a few songs, and the song, one of the songs is Jhat Kholke, that was from the film Afsar. So let's just hear that, where the music has been given by S.D. Burman.
चल तन के निकल पन थन के निकल पन थन के निकल पन थन के वो चल तन के निकल पन थन के चल तन के वो चल तन के निकल पन थन के किस्मत जाग उठी तेरी तेरी खिला दे पर
And he has done a lot of roles. The role that we remember him for is Abdul Rashid in Dhool Ka Phool, that came in 1916, where the song epitomizing Nehruvian secularism, Tu Hindu Banega Na Musalman Banega, Insan Ki Aulaad Hai Insan Banega.
Tu Hindu Banega Na Musalman Banega, Insan Ki
और दोस्तों अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, और इजाजत दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा को और मेरी सहयोगी तन्वी खुराना को। जी हाँ, तो अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.gov.in।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे।
नमस्कार।
अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं।